أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ये हमने कल लेक्चर नंबर 9 पढ़ा था, यानी लेक्चर नंबर 9 का एक हिस्सा हमने कल पढ़ा था, दूसरा पढ़ेंगे. इस लेक्चर में मुर्शिद करीम ने बताया कि कायनात जो है ये पूरी की पूरी पूरी कायनात इल्म है, और इल्म जो है ये नजूल कर रहा है, नाजिल हो रहा है, और नजूल करके ये हवास की शक्ल सूरत इख्तियार करता है, और फिर ये हवास जो हैं ये कायनात को महसूस करते हैं. तो ये जो इल्म नजूल करता है इसके तीन रुख बताए. पहला रुख जो तजल्ली है और वो लतीफ़ा अख्फा के अंदर नजूल करता है. फिर दूसरा रुख उस तजल्ली का एक अपना वस्फ है और वो लतीफ़ा सिरी में मुतहरक होता है. और फिर तीसरा रुख जो है वो तजल्ली के वस्फ की तश्कील है, यानी तजल्ली अपने औसाफ के साथ खदो खाल इख्तियार कर लेती है, और उस वस्फ का नजूल फिर या उन खदो खाल का नजूल जो है वो लतीफ़ा कल्बी में होता है, और फिर इसी वस्फ का नाम निकाह रखा है. और फिर यही वस्फ जो है कहीं गुफ्तार बन जाता है तो समात बन जाता है, तो शामा और मशाम की सूरत इख्तियार करके तो वो रंगीन एक रंगीनियों का एक पैकर बना देते हैं, और वो रंगीनियों का पैकर जो है वो लतीफ़ा नफसी को अपनी तरफ खींचते हैं. अब ये तीनों हरकतें यानी कि तजल्ली का नजूल यानी इल्म और वस्फ और उसकी तश्कील, ये तीनों पर एक वक्त हो रही होती है. अब इसी बात की उन्होंने शरह यूं की कि जब हम किसी चीज़ को जानने का इरादा करते हैं या हमारे जहन की हरकत किसी चीज़ को जानने में इस्तेमाल होती है तो ये अमल लतीफ़ा अख्फा में होता है. और फिर दूसरी ये गोया इसी को तजल्ली कहा गया है. और दूसरी हरकत जो है वो किसी चीज़ को महसूस करना है. अब महसूस करना लतीफ़ा सिर्री का अमल है. अब जानने और महसूस करने के बाद किसी चीज़ के बारे में ख्वाहिश पैदा होती है, तो ख्वाहिश के बाद ख्वाहिश कल्ब में होती है, और फिर उसके बाद अमल का सदूर अमल सादर होता है. ये लतीफ़ा नफसी की हरकत है, अमल का सादर होना. यानी अब इसको टर्मिनोलॉजिकली देखें तो साबिता से एक हरकत शुरू हुई, ऐनिया में आई, और वहाँ से जवैया में उसकी तकमील हो गई. ये सारी बातें ये फार्मूले बताकर गोया ये इसका ताल्लुक जोड़ दिया गया रूह इंसानी से, रूह आज़म से, रूह इंसानी से और रूह हैवानी से. और उसके बाद ये बताया कि हम जब दूसरी मौजूदात को देखते हैं तो हम उनको इसलिए देख पाते हैं क्योंकि उनके और हमारे दरमियान अल्लाह की सिफात का रिश्ता कॉमन है. ये कॉमनैलिटी जो है ये रीज़न बनती है कि हम अल्लाह की दीगर मखलूकात को देखें वो, और उनको पहचाने और वो हमें पहचाने. और इस सारी तरतीब और तश्कील और तदवीन पर अल्लाह के जिन अस्मा की हुक्मरानी है उनमें से एक इस्म अल्लाह है और दूसरा कदीर है. और कदीर कुदरत रखने वाले को या कादिर भी कहा गया है. अब इसका अजमाल ये पेज नंबर है 84, और हम अजमाल कहते हैं इसका एक मुख्तसर जायज़ा ब्रीफ یعنی اس کی فضیلت یا اس کی سوری اجمال یعنی ایبریجمنٹ یعنی کسی چیز کا ایک سمری سی کر دی گئی ہے پوری بات کی. تو یہ سارا نظام جو ہے اس کا اجمالی خاکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ان کی اولاد کو علم الاسماء اس لیے سکھایا کہ بندہ کائنات کی رنگا رنگ زندگی کا مشاہدہ کرے اور کائناتی حیات میں تفکر کرے. جب کوئی بندہ جد و جہد اور کوشش سے اللہ کے قانون کا تقاضا پورا کر دیتا ہے تو اس کے اوپر عرفان کے دروازے کھل جاتے ہیں. عرفان دو طرح کا ہوتا ہے. اب یہ عرفان عرف سے ہے. لفظ عرف میں نے جاننا, عرفان بھی جاننے کو کہتے ہیں. اب یہ جانکاری دو طرح کی ہوتی ہے, ایک ہے صفات کا عرفان اور دوسرا ہے ذات کا عرفان. اب یہ صفات اور ذات اگر ہم اسے ٹرمنالوجی کے سینس میں لیں تو پتہ نہیں ہم کہاں کھوئے رہے ہیں, لیکن اس کو ایک مثال سے سمجھیں. اب میں پڑھ رہا ہوں تو پڑھ رہا ہوں یہ عمل ہے, پڑھنا ایک صلاحیت ہے. میں کیسا پڑھ رہا ہوں, اچھا پڑھ رہا ہوں برا پڑھ رہا ہوں, یہ اس کی صفات ہو گئی. لیکن یہ ساری صفات اور یہ سارا پڑھنے کا جو پروسیس ہے یہ کر کون رہا ہے؟ تو میں کر رہا ہوں. میں جو ہے یہ ایک ذات ہے. اب یہ اس کو آپ خود پہ لگا کے دیکھیں, آپ سن رہے ہیں, آپ یہ ذات ہے اور سن رہے ہیں. سننے کا عمل جو ہے یہ در حقیقت کیا ہے, یہ آپ کی صفت ہے. یعنی سماعت رکھنا آپ کی صفت ہے. سننا کسی ذات کی صلاحیت ہے. اب یہ جو ذات کو جاننا ہے, یہ جس کی صفت ہے اس کو جاننے کو ذات کا عرفان کہا گیا. اب صفت کسی کی خوبی یا خامی, لیکن وہ خوبی اور خامی ہے کس کی؟ جس خامی ہے, جس کی خوبی ہے. وہ خامی اور خوبی کو ہم صفت کہیں گے اور جس کی ہے اس کو ذات کہیں گے. تو ذات کیا ہے؟ اب اس کی ڈیفینیشن آتی ہے فردر کہ یہ ذات ہوتی کیا ہے. ذات کی ڈیفینیشن جو حضور قلندر باب اولیاء نے کی ہے, یہ لا شمار حرکات کا مجموعہ ہوتی ہے اور آگے لا شمار حرکات کو جنریٹ کرتی ہے یا پیدا کرتی ہے یا وجہ بنتی ہے ان کی. عرفان دو طرح کا ہوتا ہے, ایک صفات کا عرفان, دوسرا ذات کا عرفان. اب اللہ کو جاننے میں کچھ لوگ اللہ کے کاموں کو جانتے ہیں, کچھ لوگ اللہ کی صفات کو جانتے ہیں اور کچھ لوگ اللہ کی ذات کو جانتے ہیں. یعنی جس کی وہ صفات ہیں اس کو جانتے ہیں یا جو وہ کام کر رہا ہے اس کو جانتے ہیں. اب جانکاری کے بھی آگے درجے ہیں. تو صفات کا علم جاننے والا بندہ ظاہری خد و خال کے اندر باطنی خد و خال کا مشاہدہ کرتا ہے. یہ ہے جو صفات کا علم رکھتا ہے وہ بظاہر دیکھتا ہے کہ یہ ایک چیز ہے. مثلا جیسے آپ گلاب کو دیکھتے ہیں تو یہ اس کے ظاہری خد و خال ہیں, اس کی شکل کیسی ہے, لیکن وہ اس کے اندر باطنی خد و خال, یعنی اس میں رنگ کیسا ہے, اس کی خوشبو کیسی ہے, کہاں سے آئی, کیسے دوسری خوشبویات سے ڈفرینٹ ہے وہ. تو اس چیز کا وہ مشاہدہ کرتا ہے, صفات کا علم جاننے والا بندہ. یعنی وہ فرد کائنات کی روح کا وقوف حاصل کر لیتا ہے, اس کے سامنے عالمین کا ریکارڈ آ جاتا ہے. تو صفات کا علم رکھنے والا بندہ فرشتوں سے, حشر نشر سے, عالم راف سے, برزخ سے, سماوات سے اور عرش و کرسی سے واقف ہو جاتا ہے. یعنی کہ جب کوئی بندہ ظاہری خد و خال کے مطالعے میں اتنا انہماک آ جائے کہ وہ باطنی خد و خال کا مشاہدہ کر لے, تو اس کے سامنے رفتہ رفتہ اس کا ذہن اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ وہ فرشتوں سے, حشر نشر سے, عالم اعراف سے, برزخ سے, سماوات کیا ہے, عرش اور کرسی کیا ہے, ان سے واقف ہو جاتا ہے, اس کا وقوف وہ حاصل کر لیتا ہے, وہ جان لیتا ہے کہ ہماری دنیا کی طرح اور بھی بے شمار دنیائیں ہیں. جس طرح ہماری زمین پر نوع انسانی, نوع حیوانی, نباتات اور جمادات ہیں, اسی طرح دوسری دنیاؤں میں بھی موجود ہیں. دوسرا رخ اللہ کی ذات کا عرفان ہے. ذات کا عارف یہ جانتا ہے کہ کائنات کی تخلیق کن فارمولوں پر ہوئی ہے. یعنی اس کا ذہن یہ جو بنی ہوئی چیزیں ان کی بناوٹ کے میکانزم کو بھی سمجھ لیتا ہے جو ذات کو جانتا ہے, اور کائنات میں اللہ کی کون سی مشیت کام کر رہی ہے. مشیت معنی کہ اللہ کسی چیز کو کیسا چاہتے ہیں, کس طرح کا چاہتے ہیں, اور کائنات میں اللہ کی کون سی مشیت کام کر رہی ہے. عرفان چاہے ذاتی ہو یا صفاتی, اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی روح کا عرفان ضروری ہے. یعنی سب سے پہلے ہمیں خود کو, خود اپنے آپ کو جاننا ہے, اور اس درجے پہ جاننا ہے کہ مجھے معلوم تو ہو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ کون کروا رہا ہے. یعنی آپ کو اپنی روح کا عرفان ہو. اور اسی لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ جو حدیث ہے اس کا, کہ من عرف نفسہ, جس نے خود کو جانا, فقط صرف وہ عرف ربہ, جان سکتا ہے اپنے رب کو. یعنی اگر ہم اپنے خالق کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے مخلوق ہونے کو سمجھنا ہے. اب اللہ کا ہر اسم بحیثیت علم کے علیم ہے. اللہ کا ہر اسم بحیثیت علم, یعنی اللہ کا ہر اسم علم کا ایک پورا چیپٹر ہے, اور اس علم کا مالک اور بنانے اپنانے والا جو ہے وہ کیا ہوا, وہ اس علم کے حوالے سے اس کا علیم, اس کو جاننے والا ہوا. اور اسی طرح پھر اللہ کا ہر اسم بحیثیت خالق کے, اگر کوئی اسم تخلیق کی قدروں میں کام کر رہا ہے تو وہ قدیر بھی ہے. قدیر کا مطلب ہے کہ اس کو قدرت حاصل ہے مقداروں کا تعین کرنے کی اور ان مقداروں کو دوسروں کو منتقل کرنے کی. وہی بات جو پہلے کہی گئی ہے دوبارہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا ہر اسم تین تجلیوں کا مجموعہ ہے, اور اللہ کے ہر اسم کی حکمرانی کائنات کے اوپر محیط ہے. محیط میں نے احاطہ کیے ہوئے, انہی تجلیات کا نزول مختلف مدارج میں ہوتا رہتا ہے. انہی تجلیات کا نزول مختلف مدارج میں ہوتا رہتا ہے. اللہ کی ذات کا عرفان جن انوار سے ہوتا ہے, ان انوار کا نام نہر تصویر ہے. اب ذرا غور کریں کہ اللہ کی ذات کا عرفان جن انوار سے ہوتا ہے, ان انوار کا نام نہر تصوید ہے. نہر میں نے ایک چینل ہے, تصوید سودا کا لفظ ہے, اسی سے حجر اسود ہے, یعنی سیاہ رنگ کو کہتے ہیں. तो नहर तस्वीर जहाँ पे डार्कनेस है, जहाँ पे एब्सोल्यूट ब्लैकआउट है, क्योंकि वो मादी क्या गैर मादी हवा से भी ऊपर की चीज है। तो उन अनवार का नाम नहर तस्वीर है। अब ये बात मजीद वजाहत तलब है कि रूह के तीन परतों को, अब देखें रूह के कितने परत हैं, तीन, और अल्लाह के अनवार की चार नहरें सैराब करती हैं। अब रूह के तीन परत और उनको चार नहरें सैराब कर रही हैं। अब पहली नहर का नाम नहर तस्वीद है, और नहर तस्वीद लतीफ़ा अख्फा में नजूल करती है। जितनी भी नौओं के अंदर लतीफ़ा अख्फा मौजूद है, इस नूरानी नहर के जरिए वो एक दूसरे से मुतारिफ और रूशनास है। हम जब इल्म का तस्करा करते हैं तो इल्म को महफूज करने के लिए हाफ़ज़े का नाम देते हैं। तो इल्म को महफूज करने के लिए हाफ़ज़े का नाम देते हैं, यानी जब जिसे हाफ़ज़ा कहते हैं वहाँ हाफिज, हिफ्ज़ होना यानी याद रहना, याददाश्त का नक्श बन जाना, इसी से फिर आगे लोहे महफूज भी है। तो नहरे तस्वीद के अनवार ही वो शुआएं हैं जो इंसान जिन्नात और दीरू अफराद के अंदर हाफ़ज़ा बनती हैं। जब हम किसी चीज़ को याद करना चाहते हैं या किसी भूली हुई चीज़ को शऊर के अंदर महसूस करते हैं तो ये काम हाफ़ज़ा का है। इसको बहुत आसान और मुख्तलिफ अल्फाज, मुख्तसर अल्फाज में बयान करना इस तरह मुमकिन है कि कायनात में अज़ल से अबद तक का तमाम रिकॉर्ड और तमाम मालूमात का ज़खीरा, अजल से अबद तक का तमाम रिकॉर्ड और तमाम मालूमात, जितना भी इल्म है, मालूमात जितना भी नॉलेज और इंफॉर्मेशन है, उनका जखीरा नहरे तस्वीर में है। अगर सालक उस जखीरे से इस्तफादा करने की सलाहियत हासिल कर ले तो वो लाखों साल बाद के या लाखों साल पहले के ज़मानों में गुजरे हुए वाक़यात और हादसात को देख सकते हैं। लतीफ़ा अख़फ़ा के अंदर कायनात से मुतालिक जो अज़ज़ा मुंतकिल होते हैं वो भी नहरे तस्वीद की शुआओं के ज़रिए मुंतकिल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कायनात की तख़लीक से पहले अल्लाह के जहन में कायनाती तख्लीकी प्रोग्राम जिस तरह मौजूद था वो सब नहर तस्वीद के जरिए लतीफ़ा अख़फ़ा में नजूल करता रहता है। कायनात की तख्लीक से पहले अल्लाह के जहन में जो कायनाती प्रोग्राम जिस तरह मौजूद था वो वहाँ महफूज है। वो सब गोया नहर तस्वीद के जरिए नहर लतीफ़ा अख़फ़ा में नजूल करता रहता है, यानी कि उस हार्ड डिस्क से हमारा राबिता इस नहर तस्वीद के जरिए, ये वो चैनल है जिसके जरिए हम मेन हार्ड डिस्क से कनेक्टेड हैं। हर अमल और कायनात की हर हरकत नहर तस्वीद से शुरू होती है और नहर तजहीर पर इसकी तकमील होती है। इब्तदा और तकमील का ये सिलसिला हर आन और हर लम्हा जारी और सारी है। जिंदगी की हर हरकत अल्लाह के जहन से शुरू होती है और वापस अल्लाह की तरफ लौट जाती है। यही वजह है कि अल्लाह की सिफात का सहारा लिए बगैर किसी हरकत का वजूद में आना मुमकिन नहीं है। अभी आपने सिर्फ दो नहरों के नाम सुने, नहर तस्वीद और फिर आखिरी नीचे नहर तजहीर, इनकी आगे शरह आ रही है। इस कैफियत को महसूस करें, इंसान एक गुमशुदगी के आलम में था, उसको समात हासिल थी न बसारत, यानी उसको न सुनने की हिस्स थी उसमें न देखने की, क्योंकि समात और बसारत दोनों हासिल नहीं थी, इसलिए उसको अपनी, इसलिए उसकी अपनी कोई हैसियत नहीं थी। अल्लाह ने जब मखलूक को मुखातिब किया तो मखलूक की हैसियत कायम हो गई। भाई अल्लाह ने जब मुखातिब किया तो जाहिर है अल्लाह ने किसी चीज को मुखातिब किया तो जिसको मुखातिब किया उसकी हैसियत बन गई। इंसान का और तमाम कायनात का अल्लाह के साथ एक अटूट रिश्ता है, ऐसा रिश्ता कि अगर वो टूट जाए तो कायनात मुनादिम हो जाएगी। और ये रिश्ता हमारे अंदर आगे दो रुख मुतय्यन करता है, एक रुख का नाम है एहसास और दूसरे रुख का नाम है महसूस करना। यानी ये जो हम किसी भी चीज का एहसास है हमारे अंदर या हम किसी भी चीज को महसूस करते हैं, असल में वो इस रिश्ते की वजह से। जिस तरह इंसान ने अल्लाह को देख कर ये महसूस किया था कि मैं मखलूक हूं, मैं मغلوب हूं या किसी का ताबे हूं, तो यही कवानी, यही कानून पूरी जिंदगी और आलमीन में जारी है। अब जब हम इसकी वायलेशन करते हैं तो तकलीफ में चले जाते हैं। अगर ये कानून हमें समझ आ जाए कि मैं मखलूक हूं, मغلوب हूं, किसी के ताबे हूं, तो गोया हम अल्लाह को महसूस करने के काबिल हो जाएंगे। आपस में जब दो दोस्त या दो अफराद मिलते हैं, ये एक दूसरे को देखते हैं तो उस दोस्त का असर कबूल करते हैं। ये असर दो तरह का होता है। अब दो दोस्तों में से एक असर डालने वाला होता है और दूसरा दोस्त असर कबूल करने वाला होता है। दोस्त दूसरे दोस्त को देखकर अपनी मालूमात के मुताबिक कोई राय कायम करता है, यानी दूसरे दोस्त की सिफात को बतौर एहसास अपने अंदर कबूल करता है। अब सिफात को कबूल करने का मतलब ये कि फर्द की सिफात को कबूल करके उसने अपनी महकूमियत का एतराफ किया। अब ये कानून इंसान, हैवानात, सब मवाद, नबातात सब में मुश्तरक है। दरख्त को हम उस वक्त तक दरख्त तस्लीम नहीं कर सकते जब तक दरख्त की सिफात को अपने अंदर कबूल ना कर ले। इसी तरह कोई दरख्त उस वक्त तक दरख्त नहीं है जब तक किसी इंसान की सिफत से मगलूब होकर अपनी महकूमियत का एतराफ ना करे। अब देखने की तर्ज यह है कि मखलूक का हर फर्द दूसरे फर्द को अपने अंदर देखता है, और अपने अंदर देखना उस वक्त मुमकिन है जब नफी कर दी जाए। अपनी नफी करना ही मगलूब होना और महकूम होना है। जरा इसको दोबारा समझ लें। देखना, आप किसी से मिलते हैं, जो ही आप किसी को मिलते हैं आप उसके चेहरे पे नजर डालते ही समझ जाते हैं ये बंदा बड़ा खुश है, ये बंदा बड़ा मुतमइन है, ये बंदा भूखा है, ये बंदा गुस्से में है, ये बंदा बड़ा अफसरदा है। महसूस करते हैं या नहीं? जो ही ये कैफियतों का हमारे अंदर एहसास उजागर हुआ तो आप क्या हुए? आपने महसूस किया। अब वो महसूस करते ही हम आगे से रिएक्ट कैसे करते हैं? हम अगर वो खुश है तो हमारे चेहरे पे भी खुशी आ गई, ये हमारी महकूमियत हुई, हमने उसकी खुशी के साथ खुद को वाबस्ता भी किया और सरेंडर भी किया, तभी हमने उसकी खुशी का असर अपने अंदर कबूल किया। दूसरा, अगर वो अफसरदा है हम भी अफसरदा हो गए। तो ये है वो एहसास, ये महसूस करना हुआ। एक एहसास है और एक महसूस करना। जिसने महसूस किया वो महकूमियत का अगर एतराफ ना करे, उसको कैंसिल कर दे, तो गोया उसने उस की तरफ से आने वाली इत्तलात को कैंसिल कर दिया या उसकी नफी कर दी। अब दोबारा आ जाइए वापस देखने की दो तर्ज हैं, एक तर्ज बराए रास्त देखना है और दूसरी तर्ज बिलवास्ता देखना है। बराए रास्त देखना ये है कि हमें ये समझ हो कि हर फर्द दूसरे फर्द के देखने को देख रहा है, और बिलवास्ता देखने की तर्ज ये कि हर आदमी खुद देख रहा है, हर आदमी दूसरे फर्द के देखने को देख रहा है, यानी मैं उस बंदे को बराह रास्त नहीं देख रहा, उस बंदे का अक्स मेरे जहन की स्क्रीन पे बन रहा है और मेरी जात या मेरा जहन उस स्क्रीन पे बनने वाले अक्स को देख रहा है। यह है बराह रास्त देखने की तरह। जब हम आईना देखते हैं तो हम कहते हैं हम आईना देख रहे हैं, ये देखना बिलवास्ता देखना है, और बराह रास्त देखना ये है कि पहले आईने ने हमें देखा और हम आईने के देखने को देख रहे हैं, यानी आईने ने हमारा अक्स अपने अंदर कबूल किया, उसको एक सतह पे डिस्प्ले किया और हम उस डिस्प्लेड रिफ्लेक्शन को देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम आईने को देख रहे हैं या आईने में खुद को देख रहे हैं। अब इंसानी फजीलत यह है कि उसके अंदर बराह रास्त देखने की तर्ज मुतहर्रिक हो जाए, यह है इंसानी फजीलत। इंसान की असल फजीलत यह है कि वो बराह रास्त देखने की तर्जों से मुतसिफ हो जाए, यानी उससे तारी कर ले, उससे वाकिफ हो कि उसकी इतनी मश्क करे कि वो उसका वतीरा बन जाए। अंबिया अलैहिस्सलाम बराह रास्त देखने की मुस्तहकम तर्ज फिक्र रखते हैं, ये फर्क है आम बंदे में और अंबिया कराम में। अंबिया अलैहिस्सलाम बराह रास्त देखने की मुस्तहकम तर्ज फिक्र रखते हैं। अंबिया आम अफराद को इसीलिए अंबिया को फॉलो करना होता है कि वो बराह रास्त तर्ज फिक्र से आरास्ता होते हैं और मुस्तहकम होती है उनकी ये तर्ज फिक्र, लिहाजा दूसरे उनके फॉलोअर्स को चाहिए कि वो अपने नबी की तर्ज फिक्र को अपनाएं। अब उस तर्ज फिक्र को हासिल करने के दो रास्ते, एक रास्ता तकवीनी है और एक रास्ता कुर्ब नवाफिल वाले औलिया कराम का है। अब ये तकवीनी का मतलब है कि जब अल्लाह मियां खुद आपको किसी ड्यूटी पे लगा दें तो वो सलाहियतें आपके अंदर मुंतकिल हो जाएं, और दूसरा रास्ता कुर्ब नवाफिल वाले औलिया कराम का, यानी कुर्ब नवाफिल, नवाफिल के जरिए एक्स्ट्रा काम जो कि फराइज इबादात में से ना हो बल्कि फालतू एक्स्ट्रा यानी जो काम करने के उनके अलावा कुछ काम करके तो आप कुर्बत हासिल करने की कोशिश करें। तो बाज़ औलिया कराम जो मुजाहिदे और रियाजतें करते हैं वो कुर्ब नवाफिल कहलाती है। बराह रास्त देखने की तर्ज फिक्र को हासिल करने और अपने अंदर मुस्तहकम करने के लिए औलिया अल्लाह रियाजतों और मुजाहिदों से इस बात की मश्क करते हैं कि हमारे और कायनात के दरमियान एक रिश्ता है और वो रिश्ता अल्लाह की रबूबियत है, यानी सारी कायनात एक रिश्ते में बंधी हुई है और उस रिश्ते का ताल्लुक और उस रिश्ते की मरकजियत अल्लाह तबारक व ताला की जात। वो इस बात की मश्क करते हैं कि कोई भी बात हो, कोई भी काम हो, कोई भी अमल हो, उसका रिश्ता अल्लाह के साथ जोड़ देते हैं। और इस मश्क और मुसलसल अमल से उन्हें इस चीज की आदत हो जाती है कि कोई भी अमल हो उसका ताल्लुक हमसे बराह रास्त नहीं है, उस चीज का और हमारा वास्ता अल्लाह की वजह से है। पानी और प्यास पर तफक्कुर किया जाए तो पानी भी अल्लाह की तखलीक है, बंदा भी अल्लाह की तखलीक है, प्यास का तकाजा भी अल्लाह ही की तखलीक है। बंदा, प्यास और पानी तीनों आपस में इसलिए हम रिश्ता हैं कि ये तीनों अल्लाह की मखलूक हैं। मसलन अगर अल्लाह ताला पानी को तखलीक ना करते तो प्यास ना होती और ना ही इंसान के अंदर प्यास का तकाजा पैदा होता। अलहाजल कयास, यानी आप इसी तरह जितना भी सोचते चले जाएं, कयास करते जाएं, अंदाजा करते जाएं, तो जिंदगी के तमाम वसाइल के बारे में तफक्कुर करने से यही नतीजा मुरतब होता है। मश्क के बाद इंसान आदतन ये सोचने लगता है कि मेरा अल्लाह के साथ बराह रास्त एक रिश्ता है, और जब ये तर्ज फिक्र सालिक को हासिल हो जाती है तो उसके अंदर तसर्रफ की ताकत पैदा हो जाती है। अब तसर्रफ का मतलब है दूसरी चीजों को अपने इरादे से इस्तेमाल करना। ये सर्फ का लफ्ज आपने सुना होगा ना, इसी से सारिफ, बिजली के बिलों पे लिखा होता है ना मुअज्जज सारिफीन, ये सर्फ का तसर्रफ यानी इस्तेमाल करना। तो उसके अंदर फिर अल्लाह की सलाहियतों को इस्तेमाल करने की इरादे के साथ ताकत पैदा हो जाती है। अब इस बात पे यहां पे एक जुमला और सुन लीजिए कि एक है अल्लाह के नाम की कुलियां करना, बल्कि कुरलियां करना, यानी मुंह में दोहराते रहना और कुरलाते रहना कि जी, एक है जबानी जमा खर्च। नहीं नहीं नहीं, ये असल में सारा प्रोसेस आपको थॉट में करना है। मुंह से अदा करना, जबान से अदा होना, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में उस कही हुई बात का असर आपके अंदर भी तो हो, उसको अपन अपने इनर सेल्फ में फील करके सोचने में ज्यादा जोर लगे। तो ये है अंबिया कराम की तर्ज फिक्र कि वो रास्त तर्ज फिक्र से आरास्ता होते हैं, बराह रास्त तर्ज फिक्र से। साहिब इरशाद, साहिब इरशाद क्या होता है? ये जो रुश्द और हदायत के काम करें उन्हें साहिब इरशाद कहते हैं। रुश्द कहते हैं किसी को रास्ते पे लगाना, इसी से लफ्ज मुर्शद है। तो साहिब इरशाद, जैसे ये जो हजूर कलंदर बाब औलिया के पीर व मुर्शद हैं, वो कुतुब इरशाद हैं। क्या नाम है, अबुल फैज कलंदर अली सोहरवर्दी, वो कुतुब इरशाद थे, यानी के जो लोग इरशाद करते हैं उनमें जो फिर ओहदे मिलते हैं, किसी को अपनी बातों से सीधे रास्ते की तरफ गामजन करना, रुश्द करना, उसकी रुश्द और हदायत का सिलसिला, तो ये साहिब इरशाद। और कुर्ब नवाफिल वाले औलिया कराम बराह रास्त तर्ज फिक्र को अपनी मेहनत, कोशिश और मुजाहिदों से हासिल करने की जिद्दोजहद करते हैं, लेकिन अहले तकवीन या अहले निजाम, यानी अहले निजामत में, यानी कुछ लोगों को अल्लाह की तरफ से डायरेक्टली अता हो जाती है, तो ये तर्ज फिक्र अल्लाह की तरफ से मुंतकिल होती है। और मुंतकिली से पहले, ये मुंतकिली ऐसे नहीं हो जाती, मुंतकिली से पहले पीरो मुर्शद या मुराद अपने मुरीद की जहनी तरबियत इस तरह करता है कि जहन में चूं चरा का अमल दखल नहीं रहता, और उसके अंदर मानी पहनाने की एजेंसी न्यूट्रल हो जाती है। ये है सारा निजाम। यानी जब पीरो मुर्शद किसी बंदे के अंदर से ऐसी उसकी जहनी तरबियत कर दे कि वो उसके अंदर एक्सेप्टेंस का खाना बहुत बड़ा हो जाए, उसमें चूं चरा ना रहे, याद रखिए ये चूं चरा बंदा तब करता है जब उसके हवास सुकड़े हुए हो, जब हवास में वुसत पैदा होती है तो चूं चरा कम होना शुरू हो जाती है, और फिर मानी पहनाने वाली एजेंसी न्यूट्रल हो जाए, यानी मानी पहनाने वाली एजेंसी यानी अपना जहन काम करना बंद कर दे, वो अल्लाह के जहन के मुताबिक फैसले करता है, ये है न्यूट्रल होना। तो यहां पे ये माशाल्लाह आपका चैप्टर मुकम्मल हो गया जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बहुत शुक्रिया।